آئے ہم سب خداوند اپنے خدا کے زور جھکے اور اس کے کلام کی تازہ روٹی کے لیے، جیسے جسمانی روٹی ہماری تمام کمیوں کمزوریوں میں ہمارے بدن کو قوت دیتی ہے، ویسے ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو خداوند کا کلام ہم سب کے لیے زندگی کی روٹی ہے۔ ہم سب دعا کریں گے اور کہیں گے کہ خداوند آج اس روٹی سے ہماری روحانی ترقی کے لیے تو ہمیں قوت عطا کر دے۔ خدا باپ ساری رات کے افواج کرنے کے معنی کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج کی خداوند اس سہانی صبح کے لیے تیری تعریف کرتے ہیں اور زندگی کی سانسوں کے لیے تجھے دھند باغ کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تیرا کلام جو ہم سب کے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے باپ تجھے دھند باغ کہتے ہیں، آج کلام کی اس روٹی سے ہم سب کو سیر کر اور ہم سب کی ضرورت کے مطابق خدا خدا ہماری کمی کمزوریوں کو دور کر، تاکہ ہم روحانی سورما بن کر جھوٹ اور سچائی کی اس جنگ میں خدا جنگ اپنی کشتی لڑ سکیں۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہللویا۔ میرے ساتھ نکالے نئے عہد نامہ میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 8 باب، ہم اس کی 40ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل 40واں باب، اس کی ہم 48ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اور اس کہانی میں ہمیں دو واقعات سیکھنے کو ملیں گے، لیکن ہم ایک ہی پر غور کریں گے۔ اس واقعہ میں کیا ہوگا؟ یائر کی بیٹی جو 12 برس کی تھی، جو مر گئی تھی، یسوع مسیح سے مردوں میں سے زندہ کرتا ہے، اور یسوع کی پوشاک چھونے والی ایک عورت جسے 12 برس سے خون جاری تھا، اور وہ اس روگ سے کیا کرتی ہے جی؟ شفا پاتی ہے۔ تو آئے ہم دیکھیں اس واقعہ سے، اور یہ واقعہ ہمیں لوکا کی انجیل اس کا 8 باب، اس کی 40ویں آیت سے باب کے اخیر تک ملتا ہے، اور ہم اس میں سے دو واقعہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہی واقعہ ہمیں متی 9 باب، اس کی 18 سے 26 آیت میں، مرکز 8 باب، اس کی 21 سے 43 آیت میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ سو آئے ہم دیکھیں یہاں پر کیا ہوا 40ویں آیت میں۔ جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اسے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو تقریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی، اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گر پڑتے تھے۔ اور ایک عورت نے جسے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا، اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گر پڑتے ہیں، مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا ہے کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی. اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا. پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. اس واقعہ میں ہم دو لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک 12 برس سے بیمار عورت، ایک 12 برس کی لڑکی. لیکن آج ہم جو واقعہ دیکھیں گے، جس پر غور کریں گے، وہ کیا ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا، مجھ میں سے قوت نکلی. اس میں سے کب قوت نکلتی ہے، کب اس کی قوت کیا کرتی ہے، رہائی دیتی ہے، نجات دیتی ہے، شفا دیتی ہے. یہاں پر یہ 12 برس کی بیمار عورت جسے خون جاری ہے، وہ کیا ہے جی، یسوع کو کس طرح چھوتی ہے جی، ایمان سے. ایمان سے اس نے اسے چھوا ہے، اور یسوع مسیح نے تمام بھیڑ کے بیچ اسے پتا چل گیا کہ کسی نے اسے چھوا ہے. اس ایمان سے، اس دل سے، جس سے کیا ہوا ہے، یسوع میں سے قوت نکلی ہے. تو آج ہم پہلی بار دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں ہر ایک واقعہ، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، چاہے وہ واقعہ بھوکوں کو روٹی کھلانے کا ہو، چاہے وہ واقعہ کسی لنگڑے کو چلانے کا ہو، چاہے وہ واقعہ کسی کو رہائی دینے کا ہو، چاہے وہ کسی کو قید سے چھڑانے کا یا عجیب معجزات کرنے کا، اس میں سب سے مین بات جو شامل ہے وہ کیا ہے جی، ایمان. اور بائبل مقدس میں عبرانیوں 6:11 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے پاس آنے والے ہر ایک بندے اور بندی کو کیا رکھنا چاہیے جی، ایمان رکھنا چاہیے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. یہ واقعہ پڑھانے کا، کہنے کا، آج اس پر غور کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے یہ 12 برس سے بیمار عورت کیا ہے جی، ایمان سے اچھی ہو گئی. اور یہ کب ہوا؟ پہلے لکھا ہے کہ وہ اپنا، جب ہم 43 آیت میں دیکھتے ہیں، ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی. اس نے پہلے 12 برس اپنا ایمان دنیا کے اس نظام، اس حکمت پر لگائے رکھا، لیکن وہ وہاں سے شفا پا نہ سکے. آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں بھی یہاں پر کوئی موجود ہو، کہ جب ہمارے ایمان کا بھروسہ، توکل درست جگہ پر، درست بندے پر نہیں، وہ ہمیں شفا نہیں دیتا. اس پنکھے سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بجلی چلے گی تو یہ پنکھا ہمیں ہوا دے گا، اس سے یہ دعا نہیں کر سکتے کہ تو میرے گھر کی کیا کرتی مصیبت کو دور کر دے. ہم پنکھے پر ایمان نہیں رکھ سکتے، ہم کسی دیوار پر ایمان نہیں رکھ سکتے، کسی قبر پر ایمان نہیں رکھ سکتے، کسی بندے پر ایمان نہیں رکھ سکتے کہ وہ بندہ ہمیں کیا کرے جی، نجات دے، یا ہمارے لیے معجزہ کرے، یا کوئی اور کام کرے جس کے لیے ہم اس پر توکل کر رہے ہیں. ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو ناکام کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ فریب کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کیا کر سکتے ہیں جی، خداوند کی راہ سے دور لے جا سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں جی، ترقی کی بجائے بربادی کا باعث بن سکتے ہیں. اگر ہمارا ایمان صحیح شخص پر نہیں ہے، اور یہاں پر یہ دوسری بات ہے کہ وہ 12 برس سے اپنے روپے پیسے حکیموں پر، روپیہ پیسہ خرچ کر चुकी थी लेकिन उसे किसी से भी शिफा ना मिली। और जैसे ही उसे पता था कि यीशु मसीह कोई है, उसके बारे में उसने सुना उसकी बीमारी को वो ठीक कर सकता है, तो वो ईमान से आई। तो आज बताना चाहता हूं कि इस 12 बरस से बीमार औरत की कैसी कैफियत और कैसी हालत हो सकती है। यहूदी निजाम के मुताबिक जो खुदा ने मूसा को दिया था, कोई नापाक बंदा अगर वो किसी कोड़ी को छू ले तो वो 7-8 दिन तक नापाक रहता था। अगर कोई और किस्म का गुनाह कर ले तो उसे कुर्बानी देकर अपने गुनाह की माफी करवानी होती थी। और खासकर नापाकी हालत में वो ना किसी इबादत में जा सकते थे, ना किसी और प्रोग्राम में शरीक होने का उनको हुक्म था, और ना ही वो लोगों से मिल सकते थे कि जी सलाम जी, और वो कहेंगे कि शलोम शलोम। शलोम का मतलब है खुदावर यहोवा की सलामती, जैसे हम कहते हैं सलाम जी खुदा बरकत दे, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से ये वो, एक दूसरे को छू सकते हैं। यहूदियत में बड़ी ही सख्ती थी कि जो कोई नापाक है वो ना हैकल में जा सकता है, ना कुर्बानी चढ़ा, ना कुर्बानी के उस मज़बे पर जा सकता है कि जाकर दुआ करे, उसे अपने आप को पाक साफ करके फिर आगे जाना होता था। सादा लफ्जों में वो किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते थे। दूसरी बात, वो किसी के साथ ऐसे ही हाथ नहीं मिला सकते थे, गले नहीं मिल सकते थे। और जब ये सारा सिलसिला कब खत्म होता था, जब कोई अपने आप को पाक साफ करता था खुदा के निजाम के मुताबिक जो खुदा ने दिया था। तो इसकी बीमारी जो 12 बरस से बीमार औरत है, ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये कोई सिर्फ ये नहीं था कि उसने किसी मुर्दा को छुआ है, किसी नापाक को छुआ है, या कोई ऐसा जुबान से या जहन से या कोई और अमल किया है जिसके बायस उसे इन तमाम प्रोग्रामों में दाखिल होना ममनू कर दिया गया था। उसे क्या किया गया था जी, उसे जो बीमारी थी उसकी वजह से 12 बरस से लोगों ने उसे बोलना उसे पसंद नहीं करते थे। वो किसी शादी में नहीं जा सकती थी, किसी सालगिरह में नहीं जा सकती थी, किसी के दुख में शरीक नहीं हो सकती थी, किसी की कोई भी प्रोग्राम या रसूमात थी उसे हुक्म था कि वो वहां पर ना जाए। आपको पता है कोड़ियों के लिए क्या हुक्म था, कोड़ी शहर में नहीं रहते थे। जैसे हमारे एक गली की नुक्कड़ है जहां से हम बस्ती में दाखिल होते हैं, जितने शहर उस दौर में और आज भी तैयार किए जाते हैं जो इसराइल के इलाके में पाए जाते हैं इर्द गिर्द, उनके फाटक होते थे और शहर को बंद कर दिया जाता था और शहर के लोग अंदर आते जाते थे। आप सबको याद होगा जब यीशु मसीह मत्ती मसूल लेने वाले को मिलता है तो वो कहां पर मिलता है, शहर के फाटक पर जहां पर वो मसूल लेने का काम करता था। तो घोड़ियों के लिए हुक्म था कि वो शहर से बाहर रहे, और जब कभी वो शहर में आते थे तो उनको हुक्म था कि वो क्या कहें जी, बाइबल की तारीख और बाइबल की ये तालीम सिखाती है कि वो जब शहर में आते थे तो उनके लिए हुक्म था चला चला कर कहना नापाक नापाक नापाक। और इस लफ्ज को जब सुनते थे तो लोग रास्ता छोड़ देते थे ताकि उसको कोई छूने से नापाक ना हो जाए। तो ये 12 बरस से बीमार औरत की हालत भी ऐसी ही थी, ये किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी, उसे अपने ही घर में अलहदा रहने का क्या था जी, जैसे नजर बंद कह सकते हैं उसे जिंदगी गुजारनी पड़ी। वो अपना दुख किसी को बता नहीं सकती थी, वो अपने किसी अजीज के प्रोग्राम में जा नहीं सकती थी। और खासकर वो हैकले खुदा में नहीं जा सकती थी। सो यहां पर वो क्या जरूरत करती है, इस सारे दुख को सहने के बाद वो क्या करती है कि जो बात हम सीखते हैं वो क्या हुआ, सारा खर्च कर चुकी है, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। उसका ईमान इतना है कि वो जिंदगी जिससे सादर होती है, जो पाकीजगी का मंबा है, उसकी पोशाक का क्या है जी, पलड़ा ही वो छूती है और उसकी बीमारी दूर हो जाती है। और वो उसकी जब बीमारी दूर होती है, वह उतनी खौफ ज्यादा है कि बताना नहीं चाहती। लेकिन यीशु मसीह क्यों ये सवाल करता है, क्यों यीशु मसीह ने ये नहीं कह दिया, उसे पता था कि मुझ में से कुव्वत निकली है, किसी को मैंने शिफा दी है और वो औरत ये है, उसका नाम भी ये है, वो इतनी देर से दुख उठा रही है। लेकिन क्यों यीशु मसीह ने उसे नाम से नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने ये बात वाजिया करने के लिए कि मुझ में से कुव्वत निकली है, किसी ने मुझे यहां पर छुआ है, वो जाता था कि वो गवाही देने के लिए आगे आए। हमें भी अपनी जिंदगी में अपनी गवाही को छिपाने की जरूरत नहीं है। दलेरी के साथ आए अपनी गवाही में, जैसे इसने कांपते हुए, जरूरी नहीं कि हमारे अल्फाज बहुत अच्छे हों, हमें अंदाज आना चाहिए कि कैसे गवाही दें, कि हमें कौन से लफ्ज कहने चाहिए। और बहुत दफा जैसे टीवी में प्रोग्रामों पर देखते हैं कि वो जो गवाही लेने वाले हैं वो क्या करते हैं, गवाही देने वाले के मुंह में अपने लफ्ज ही डालते रहते हैं, तुसी इस तरह गवाही देना, तुसी इस तरह कहना। यहां पर ये किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं किया गया कि जी आप ऐसा करना कि आपसे हम पूछेंगे कि आपको किसने शिफा दी और आप कहना कि जी फलां ने। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, यहां पर कोई ऐसा ड्रामा नहीं किया गया कि वाकया ही उसे बताया जाए कि क्या है लिखा है, वो क्या करती है। इस पर यीशु ने कहा, कौन है जिसने मुझे छुआ है। जब सब इनकार करने लगे, इनकार क्यों करने लगे, क्योंकि बथेरे थे जो उसे छू तो रहे थे, उसके साथ चल तो रहे थे, उसकी सुन तो रहे थे, उसे देख तो रहे थे कि वो बीमारों को अच्छा कर रहा है। इस भीड़ में बहुत से वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी गरसीनियों के इलाका में उस लश्कर से भरे हुए इंसान को देखा कि उसकी सूरत बदल गई, वो कपड़े पहने हुए है, उसको होश आ गई है और वो कहता है कि यीशु मुझे अपने साथ ले ले। यीशु कहता है कि जाकर अपने लोगों में बता कि खुदा ने तेरे लिए कैसे काम किए। लोगों ने इस माजरे को देखा है, सुना है, उसकी गवाही है, लेकिन वो डरे हुए हैं। लेकिन इस औरत को क्या करते हैं कि यीशु ने कहा जिसने मुझे छुआ है, जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने भी कहा कि ऐसा सब लोग तुझे दुबाते, तुझ पर गिरते पड़ते, तुझे छू रहे हैं। यीशु मसीह आज हमको जो सिखाना चाहता है वो ये है कि हम ऐसे लोगों में ना हो कि उसके साथ चलें, फिरें, उसकी सुने, उसे देखें और उसके कलाम पर अमल ना करें। जैसे ये बच्चा, जब हम कलाम को तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो फिर हम उसके साथ चलते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे और हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा। इसलिए जब भी हम खुदा का कलाम सुनने के लिए बैठें, हम अपने कानों की खिड़कियां खोल कर। तो क्या हुआ, सब इनकार करने लगे और यीशु ने कहा नहीं, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझ में से कुव्वत निकली। उसमें से कुव्वत निकलती है जब उसकी कुदरत लोगों को शिफा देती है। और वो औरत क्या करती है, कोई सिखाए हुए लफ्ज लेकर नहीं आती तो क्या हुआ है? 47वीं आयत में लिखा है, जब उस औरत ने देखा कि मैं छुपा नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया, गवाही दी। पादी साहब हमारे लिए दुआ करें जी। है बहन जी, क्या मसला है? बस दुआ कर दो, हमें अपनी उस दुखी हुई रब को उस पर उंगली रखने की जरूरत है कि खुदावंद खुदा मेरा ये रोग है उसे शिफा दे। दूसरी बात, वो कांपती हुई डरती हुई आई है और गवाही देती है। जब कहते हैं कि बहन जी खुदा के हुजूर आपके लिए दुआ की भाई जी, तो हाँ जी खुदा ने जी हमें शिफा दे दी है, तो आप गवाही देने के लिए मैनू नहीं आती जी, शर्म आती है जी, मैं की कहूंगा। यहां पर बताया गया कि क्या कर सकते हैं। वो कांपती हुई और उसके आगे गिरकर लोगों के सामने बयान करती है कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और उसी दम मुझे शिफा मिल गई। मैंने किस वजह से तुझसे कहा कि खुदा मुझे शिफा दे। तो आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवाही नहीं देते। उम्मीद है कि हम उनमें से नहीं हैं। अगर हैं तो अपनी गवाही दें। दूसरी बात, हम उसी ही एक दूसरे के क्या बने जी, हमदर्द बने। अगर कोई किसी मुश्किल में, किसी बीमारी में, किसी परेशानी में है तो उसे ये कहकर अनदेखा ना कर दे कि नापाक है, गुनाह के बायस है, इसकी अपनी मुश्किल है, अपनियां कीतियां भुगत रहा हुआ नहीं। हम इस 12 बरस के बीमार जैसी हालत में, औरत के जैसा माहौल आज लोगों को ना दें कि जी ये मुश्किल में है, इसने अपनी की है, अपनी ही भरेगा, बल्कि हम यीशु की तरह क्या करें जी, उनकी मुश्किल में उनके हमदर्द बने, उनके मदद करने वाले बने, उन पर रहम करने वाले बने। और हमारी कलीसिया में, हम में एक दूसरे में बहुत से ऐसे लोग हैं, हम अपने आप में ही अकेले ही दुख ना उठाते रहें। पहली बात, अपना दुख यीशु को बताएं, दूसरी बात एक दूसरे के साथ शेयर करें। और मैं चाहूंगा आपकी हौसला अफजाई करना कि कहां से शुरू करें, एक दूसरे से। हमारे मोहल्ले में दो नए कारोबार शुरू हुए हैं, एक तंदूर, एक हेयर कटिंग वाली दुकान। उनके लिए खुदा ने किस तरह मुहैया करना है? कलीसिया के वसीला से। अगर आप शादीशुदा तो अपने खावन को कहें कि जी हमारे मोहल्ले में नई दुकान है, हम और हमारे बच्चे वहां से बाल कटवाएंगे ताकि मसीह के नाम को जलाल मिले, क्योंकि कोई और दूसरे शहर से आकर उनको काम नहीं देगा। अपने घर में हम सब रोटी पकाते हैं, लगवाते हैं, तंदूर ना खुला है, हम क्या सोचें कि हमें अपनी बहन और भाई के लिए क्या बनना है, बरकत का बायस बनना है? ना के जी, पीछे हम इतने पैसे देते थे आपको, उससे भी धेली और 50 पैसे कम देंगे। और अगले के मुश्किल को नहीं समझना कि किसी ने अगर कारोबार शुरू किया है तो वो इज्जत की रोटी कमाना चाहता है बजाय किसी और गलत काम करने को। तो आज मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप रोटी वगैरह बनवाते हैं तो जरूर उस बहन को, उस भाई को, कल वो मजदूर जो रोटी लगाता वो मुझे कहता है कि जी कारोबार है नहीं, कोई आता नहीं, कम लोग आते हैं, किसने जाना है? ये 12 बरस बीमार वाली औरत वाला साहब हम लोगों के साथ ना करें। आपकी मुश्किल आप जानो, हम तो हैकल में खुशी से जाएंगे, तुम बीमार हो तुम घर ही में सड़ो। अगर हमें खुदा ने खुशहाली दी है तो जरूर उस खुशहाली में से दूसरों के लिए बरकत का बायस बने, क्योंकि जो खुशहाली आपको मिली है किसी और ने उसके बारे में सोचा है तो आपको नौकरी, आपकी मदद और आपके लिए कुछ ना कुछ उसने दिया है। अगर हम इस तरह सोचना शुरू करेंगे तो हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनेंगे, ना के तिड़ खा के ओ मसीही भैन भरा ने तंदूर लगाया इन्हें को तो लगाना ही नहीं, ओ मसीही भाई ने बालों वाली दुकान बनाई है इसके पास नहीं जाना। क्या आपको ज्यादा इज्जत देता है इसलिए? तो 12 बरस की बीमार औरत 12 साल से उन लोगों में रहती थी लेकिन उन लोगों ने उसे वो मोहब्बत नहीं दी जो देनी चाहिए। जाकर उसे खाना नहीं पूछा कि तुझे नापाकी की हालत में हो सकता है कि किसी ने दुकान पर खड़ा भी होने ना दिया हो और कहा हो कि पैसे वहां पर रख दो और पीछे खड़ी हो जाओ और तुम्हारा जो राशन है वो तुझे मिल जाएगा और जब मैं दूर हो जाऊं तो तब अपना राशन उठा लेना। हम आज लोगों के साथ एक दूसरे के साथ ऐसा ना करें, एक दूसरे के हमदर्द बने। तो इसके लिए दुआ भी करें कि खुदावंद इस कारोबार को बरकत दे, दोनों कारोबारों को बढ़ा ताकि तेरी शुक्रगुजारी हो। आए हम खुदा के सुरते दुआ करें कि खुदावन खुदा हम सब की रूहानी आंखों को खोले कि आज हमारी कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुख उठा रहे हैं, हम उनके दुखों से वाकिफ नहीं लेकिन उनके लिए दुआ करें। आज नए कारोबार हैं उनके लिए दुआ करें कि खुदावन उनको तू बहाल कर। हम जब किसी के लिए भला चाहेंगे खुदा कहता है मैं तुम्हारा भला करूंगा, जब तुम भलाई करोगे तो मैं तुमको बरकत दूंगा। जब खुदावन खुदा के हुजूर हम झुकते हैं तो खुदावन खुदा हम सब के लिए क्या करता है, जीत जीत काम करता है। खुदावन खुदा नए खुदावन कारोबार के लिए जो खुदावन खुदा सलोन खुला है उसके लिए खुदावन बहुत से कलीसिया के लोग दूसरों को बताएं ताकि खुदावन वहां पर तू उनके लिए रिज़्क रोटी का वसीला ठहरे। खुदा बाप ने तंदूर के लिए खुदावन उनके लिए तू खुदावन खुदा बरकत दे, वो बेदिल होकर उस कारोबार को बंद ना करें, उनके ईमान को बढ़ा ताकि खुदावन खुदा वो और ज्यादा इस कारोबार में तेज हो। लश्करों के रब यीशु मसीह के नाम में हम सब की आंखों को खोल ताकि हम फिक्र करने वाले लोग बने। यीशु मसीह के नाम में ऐ बाप ये दुआ मांगता हूँ।